नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत की कथा में और दूसरी जगह भागवत आदि कथा में कहीं कहीं भिन्नता मिलेगी तो ये आश्चर्य होता है कि ये सही है कि वो सही है। इसमें आपको बतावें कि महाभारत की रचना व्यास जी ने पहले की है और भागवत की रचना बाद में की है। भागवत ये महाभारत की रचना के समय व्यास जी महाराज के हृदय में इतनी ज्यादा भक्ति का भाव नहीं था। भागवत जब लिखने लगे तो भक्ति के अंदर पहले डूबे और उसके बाद भागवत लिखे, तब उनके मन में ये भावना रही कि लोगों के मन में भी भक्ति का उदय हो, तो वहां उन्होंने और ढंग से कथाओं को लिखा है। इसलिए आप देखो यहां भगवान से जो बातचीत होती है युधिष्ठिर आदि की, किसी की भी बहुत ज्यादा भक्ति की बात नहीं होती है, लौकिक बातें होती हैं, व्यवहार की बातें होती हैं, भक्ति की बात कम होती है। जैसे कल आपने नारद जी का उपदेश सुना, भक्ति की बात कम है, बहुत कम है। भगवान कृष्ण ये संबोधन कोई कोई कभी कभी युधिष्ठिर जी बोलते हैं। जैसे अब जरासंध का प्रसंग है तो भागवत में और ढंग से है, यहां और ढंग से है। यहां कल आपने सुना कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? कि ऊंचे लोक के अंदर नारद जी पांडु से मिले तो पांडु ने कहा कि नारद जी मेरे बच्चों को कहो कि वे राजसूय यज्ञ करें, मुझे बड़ी तृप्ति मिलेगी। और वैसे भी राजसूय यज्ञ करना चाहिए राजा को, परंतु भगवान से सलाह लिए बिना किए नहीं। भगवान ने कहा कि जरासंध के रहते हुए तो आप राजसूय यज्ञ करोगे बाधा पड़ेगी, उससे तो लड़ाई करना भी बड़ा मुश्किल है, कौन लड़े उसके से। जरासंध के पास में इतनी शक्ति है, आप कोई नहीं लड़ सकते, मैं लड़ा हुआ हूं इसलिए बोलता हूं। भीमसेन, अर्जुन और हम तीनों उसके पास जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं राजसूय यज्ञ के बहाने से आप तीनों के प्राण संकट में नहीं देख सकता, मुझे राजसूय यज्ञ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा इतने हिम्मत मत हारो, राजसूय यज्ञ करो, हम तीनों उसके पास जाते हैं। वो भीमसेन से लड़ेगा और भीमसेन उसके प्राण ले लेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा पूरा विचार किया और रवाना हो गए, यहां तक कथा हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पद्मसर, कालकूट, गंडकी, महाशोण, सदानीरा, गंगा, चरमनवती आदि पर्वत और नदी नदों को पार करते हुए भी मगध देश में जा पहुंचे। वहां जाकर उन लोगों ने ब्राह्मणों जैसा वस्त्र पहन लिया, वल्कल वस्त्र पहन लिए और कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथ पर पहुंच गए। उस पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष और जलाशय थे। गौओं के लिए वह बहुत मुख्य क्षेत्र था, इसलिए उसको गोरथ पर्वत बोलते थे। उस पर्वत पर से मगधराज की राजधानी बहुत स्पष्ट साफ दिख रही थी। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदनंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दिनों वहां बड़े अपशकुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और कहा कि महाराज, अपने नगर में महान अरिष्ट लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो अरिष्ट की शांति का कोई उपाय करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि बोलो क्या करें, कि आप अरिष्ट की शांति के लिए हाथी पर चढ़कर अग्नि की परिक्रमा करो। उन्होंने अग्नि की परिक्रमा की। स्वयं मगधराज ने अरिष्ट शांति के लिए और भी बहुत से नियमों का पालन किए करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके तपस्वियों के वेश में जरासंध से बाहु युद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में प्रवेश किए। उनके विशाल वक्षस्थल देखकर नागरिक चकित और विस्मित हो गए। उन्होंने क्रमशः जनसंकीर्ण और सुरक्षित तीन डोढ़ियां पार की। जनसंकीर्ण माने लोगों के लिए जो छोटा पड़ता था, ऐसी जगह को पार किया। तीन डोढ़ी पार की, जैसे एक पिरोड़ आई, फिर दूसरी पिरोड़ आई, फिर तीसरी पिरोड़ आई। वे निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। तपस्वियों को देखकर जरासंध जहां बैठा था वहां से खड़ा हो गया और उसने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्ग आदि से उनका सत्कार किया। हे जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के जो आज वेश है, उन वेश से उनके आचरण का कोई मेल नहीं खा रहा था। इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, मैं जानता हूं कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते हैं। इस समय आप मुझसे मिलने आए हैं तो चंदन और ये माला कैसे धारण किए? कौन है आप? आपके कपड़े लाल हैं, शरीर पर पुष्पों की माला और अंगराग भी है, और आप लोगों की भुजाओं में गठन है और धनुष की प्रत्यंचा का निशान भी आपके यहां हथेली के कोहनी के पास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बारे में मुझे कुछ संशय सा भी हो रहा है। आप लोग यूं डोढ़ियों से आए, दरवाजे से क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का कार्य ब्राह्मणों के कार्य से विपरीत है। ब्राह्मण का शरीर बहुत कोमल होता है, आपका शरीर बड़ा सुगठित है। चलो जो भी हो, आप जानो, आपका काम जाने, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने कहा, गंभीर वाणी में और स्निग्ध वाणी में कहा, राजन, हम स्नातक ब्राह्मण हैं, यह तो आपकी समझ में आ ही गई बात। स्नातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है, क्षत्रियों की भुजाएं उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो वैसे भी देख सकते हो, धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और निर्भयता के साथ प्रवेश करते हैं, किंतु मित्र के घर द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है सुसंगत किया है, तुम हमको पहचानो। जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आता। मैंने तो कभी ब्राह्मणों का अपमान किया नहीं, मैं ब्राह्मणों को शत्रु समझता नहीं, और निरपराध को मैं शत्रु समझूं, सत्पुरुषों के लिए उचित नहीं है। मैं अपने धर्म पर तत्पर हूं, मैंने कभी प्रजा का अपकार नहीं किया है, फिर आप मुझे शत्रु दृष्टि से क्यों देखते हैं? कहीं आप उन्माद वश तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसे ही बोल दिया, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, राजन तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है कि सब क्षत्रियों का बलिदान करेंगे, क्या यह कम अपराध है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना, ये कहां तक उचित है? तुम्हारे यहां कैद खाने में कितने राजा हैं? क्या वो क्षत्रिय नहीं है? हम उनकी सहायता करने आए हैं। तुम क्षत्रिय जाति का नाश करते हो और हम उनकी उन दुखियों की सहायता करते हैं। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारा वध करने के लिए आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूल रहे हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, तुम्हारा भ्रम है। इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी है जरासंध, इसमें कौन किसके लिए कह सकता है कि मैं सबसे बढ़कर हूं? इस पृथ्वी के आंचल में न जाने कितने कितने तुमसे अधिक वीर बैठे होंगे। तुम कौन से घमंड को लेकर पाल रहे हो? तुम्हारा ये घमंड हमसे सहन नहीं होता है। अपने बराबर वालों के सामने घमंड छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें अपने पुत्र मंत्री और सेना के साथ यमराज के लोक में जाना होगा। हमारे आने का निश्चय ही उद्देश्य केवल युद्ध है, हम ब्राह्मण नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह से पहचानो, नहीं पहचानते हो तो बताता हूं, मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूं और मेरे अगल और बगल में खड़े हुए पांडुनंदन भीमसेन और अर्जुन हैं। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने के लिए आए हैं, या तो तुम समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो या हमारे साथ युद्ध करके परलोक पधारो। जरासंध ने कहा, वासुदेव तुम, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूं, एक भी राजा को बताओ कि मैंने उसको उठा करके छल से कपट से मैं लाया हूं क्या? उस पर मैंने विजय प्राप्त की है, उसने मेरे सामने दीनता स्वीकार की है, तब मैं यहां लाया हूं। और तुम्हारे इन धमकियों से मैं इन राजा को छोड़ दूंगा? नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ो, तुम चाहो तो मेरे अकेले के साथ लड़ो, तुम चाहो जो युद्ध कर सकते हैं, चाहे एक साथ लड़ लो चाहे तुम्हें से अलग अलग लड़ लो। यह कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। उसके पुत्र का नाम भी सहदेव था, जरासंध का पुत्र था उसका नाम सहदेव था, ये नकुल सहदेव दूसरे हैं। अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी, क्या पता युद्ध में हम मर जाएं तो हमारा राज्य किसी और को नहीं हमारे बेटे को मिले, राज्याभिषेक कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं नहीं मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का अंदर ही अंदर निश्चय किया। हे जनमेजय, जब भगवान कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध के लिए अब उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा, राजन हम तुम्हारे सामने तीन योद्धा खड़े हैं, तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? हम तीनों ही तैयार हैं। जरासंध ने कई देर तक इन तीनों को देखा। देखने के बाद भीमसेन के लिए कहा, इसके साथ हम कुश्ती लड़ना स्वीकार करते हैं। उसने माला मांगलिक चिन्ह धारण किए, पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने, ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया, क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ वहां आकर खड़ा हो गया। आ जाओ। जरासंध ने कहा, भीमसेन आओ, ये जरासंध तुमसे युद्ध के लिए मैदान में ललकार रहा है, खुली चुनौती दे रहा है, बलवान के साथ लड़कर मरने पर भी यश ही मिलता है, आओ भीमसेन। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे, दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया। हाथ मिलाने के पहले एक ने एक दूसरे का पैर छुआ, तदनंतर खम और ताल ठोकते हुए परस्पर आपस में गुथ गए। उन्होंने तृणपीड, पूर्ण योग, समुष्टिक आदि अनेकों दाव पेच किए, कुश्ती के दाव हैं। उनकी कुश्ती अपूर्व थी, उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्ववासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, बूढ़े, बालक सब इकट्ठे हो गए। उनके प्रहार और छीना झपटी से बड़ी कर्कश ध्वनि निकलती थी। वे कभी हाथों से एक दूसरे को धकेलते थे, कभी गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक दूसरे को खदेड़ते, कभी एक दूसरे को खींचते, घसीटते, घुटनों की चोट करते, हुंकार करते, घूंसे लगाते। वे जिधर जाते उधर की जनता भाग खड़ी होती थी। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बाह वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलन टकरा रहे हों। वह युद्ध कार्तिक वदी एकम से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन तक रात तक खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। दिन रात चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। भागवत में 27 दिन आता है। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को उभारते हुए कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं है। अरे अधिक जोर लगाने पर तो वह मर ही जाएगा, इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन की और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि भीमसेन, तुम में दैव बल और वायु बल दोनों ही हैं, तुम जरासंध पर तनिक भी उन बलों को दिखाओ तो सही, वो बल कब काम लोगे। कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने एकदम जोश खाकर जरासंध को दोनों हाथों से उठा लिया, बड़े जोर से आकाश में घुमाने लगा, 100 बार घुमाकर उसे जमीन पर पटका और घुटने की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ हड्डी को पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरा पैर पर अपना पैर रखकर उसे 2 खंडों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। स्त्रियों के गर्भपात होने की नौबत आ गई। सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, कहीं पृथ्वी के टुकड़े तो नहीं हो गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन शत्रु का नाश करके उसके प्राणहीन शरीर को रनिवास की ड्योढ़ी पर लाकर पटक दिया और रातों रात वहां से निकलकर बाहर गए। श्री कृष्ण ने जरासंध की ध्वजा मंडित दिव्य रथ को जोता, उस पर भीमसेन और अर्जुन को बैठाया और वहां से चलकर कैदी राजाओं को पहाड़ी के खो से बाहर निकाला। उस रथ से ही वे राजाओं के साथ वहां से चल पड़े। उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। 2 महारथी उस पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उसके ऊपर भीमसेन और अर्जुन बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी का काम किया। उस रथ पर बैठकर कभी इंद्र ने 99 बार दानवों का संहार किया था। उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी जो बिना किसी आधार के लहराती रहती थी। बिना आधार के इंद्रधनुष की सी उसमें चमक थी। 1 योजन दूर से वो ध्वजा दिख जाती थी। वह रथ इंद्र ने वसु नामक राजा को, वसु ने बृहद रथ को और बृहद रथ ने अपने पुत्र जरासंध को दिया। वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तीनों भाई वहां से आगे की यात्रा करने लगे। परम यशस्वी करुणा वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण रथ हांक कर गिरिव्रत से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की सविधि पूजा की। राजाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने भीम और अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें छुड़ाकर हमारे धर्म की रक्षा की है। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। हम जरासंध रूप विशाल ताल के दुख दलदल में फंस गए थे, आपने हमारा उद्धार किया, हम दुख से मुक्त हो गए। आपने हमारी उज्जवल कीर्ति स्थापित कर दी। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। अब हमारे लिए आप कोई आज्ञा दीजिए। आप कठिन से कठिन भी आज्ञा देंगे तो भी हम प्राण पर्यंत उसका पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन देते हुए बड़े शांत और मीठे वचनों से कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजा लोग सब आपस में अपना अपना मुंह दिखाने लगे, अरे कैसी बढ़िया आज्ञा दी है, हम तो क्या समझ रहे थे, उन्होंने कितनी बढ़िया आज्ञा दी। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना, बड़े आनंद में विभोर होकर गदगद भाव से भगवान के सामने उन्होंने कहा, महाराज आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार की रत्न राशि भेंट देने लगे। भगवान ने कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट को स्वीकार की। उनका कि भेंट तो वहां जाकर दे। जरासंध का पुत्र सहदेव अपने मंत्रियों और पुरोहितों को साथ में लेकर बड़ी नम्रता से भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुए। सहदेव ने कहा, प्रभु मैं अपने पिताजी को पहले से ही निवेदन करता था कि आपके साथ बैर न करें, पर पिताजी इस बात को मानते नहीं थे। मेरा हृदय से आपके चरणों में प्रेम है, मैं आपको भेंट प्रदान करता हूं, आप स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने और भीमसेन ने सहदेव का वहां राज्याभिषेक किया। सहदेव, तुम्हारे राज्य में यदि कभी कोई कठिनाई आए तो तुम हमको याद कर लेना। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपने राजधानी में लौट गया। भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों के और सब राजाओं के साथ धन रत्न लदे रथ पर शोभायमान इंद्रप्रस्थ पहुंचे। आज धर्मराज युधिष्ठिर के आनंद की सीमा नहीं रही। भगवान ने कहा, राजेंद्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्न लौटा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया, भाइयों को गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। बंधन मुक्त राजाओं से मिलकर और भेंट स्वीकार कर उनका आदर सत्कार किया और फिर समय पर उन्हें विदा भी कर दिया। अपने अपने वाहनों में बैठकर राजा लोग अपने अपने देश में चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहां से आए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारिका के लिए यात्रा की। यात्रा के समय पांडवों ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का यथोचित अभिवादन परिक्रमा की। जन्मेजय इस ऐतिहासिक विजय और राजाओं को छुड़ाकर अभय देने के कारण पांडवों का सब दिशाओं में बड़ा भारी यश फैल गया। महाराज युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजा पालन करने लगे। धर्म का धर्म, अर्थ और काम तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में लगे रहते थे। जन्मेजय, एक दिन अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं को आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हारी अवश्य विजय होगी। युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयों ने दिग्विजय की यात्रा की। यद्यपि चारों भाइयों ने एक साथ चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी, फिर भी मैं तुम्हें उनका क्रमशः वर्णन सुनाता हूं। अर्जुन उत्तर दिशा की ओर विजय का भार संभालने के लिए गए। वहां आनर्त, कालकूट, कलिंद देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर शाकल द्वीप और प्रतिविंध्य पर्वत के राजाओं पर विजय प्राप्त की। सात द्वीप के राजाओं में से शाकल द्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों के सामने उनको हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई की। वहां के प्रतापी राजा का नाम भगदत्त था। भगदत्त के सहायक किरात, चीन आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग भी थे। आठ दिन तक भयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का पूर्ववत उत्साह देखकर भगदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाबाहो अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना? इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूं, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इंद्र मेरे मित्र हैं। तुम इंद्र के पुत्र हो तो मेरे ही पुत्र हो। बेटा क्या चाहते हो? जो तुम्हारी इच्छा हो पूरी करूंगा। अर्जुन ने बड़ी नम्रता से कहा, महाराज ये बात आप मुझे पहले ही बता देते मैं आप पर क्यों बाण चलाता। राजन, कुरुवंश शिरोमणि सत्य प्रतिज्ञ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजसु यज्ञ करना चाहते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट हों, आप उन्हें कर दीजिए, कर माने टैक्स। इसलिए मैं आपको, क्योंकि आप इंद्र के मित्र हैं, तो आज्ञा तो नहीं दे सकता हूं, निवेदन ही कर सकता हूं, बड़े प्रेम भाव से आप भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर तो मेरे भी प्रेम पात्र है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, और कोई बात हो तो बताओ। वीर अर्जुन ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वे आगे रवाना हो गए। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर बाहर और आसपास के सब स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देश के राजा वृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और अर्जुन की शरण में आया। अर्जुन ने वृहंत का राज्य उसी को सौंपकर उसकी सहायता से सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे राज्य च्युत कर दिया। क्रमशः मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर कुलूक देशों के राजाओं को वश में करके पंचगणों को अपने वश में किया। उन्होंने पौरव नाम के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों म्लेच्छों को सात प्रकार के थे जीत लिया। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों के अध्यक्ष राजा लोहित को अपने अधीन कर लिया। त्रिगर्त, दारू और कोकनद के नरपति स्वयं शरणागत हो गए। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरक देश के राजा रोचमान को हराया और वालीक वीरों को अपने अधीन करके दरद, कंबुज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश में तोते के उदर के समान हरे रंग के 8 घोड़े लिए। निकुट और पूरे हिमालय पर विजय वैजयंती फहराकर धवलगिरी पर सेना का पड़ाव डाल दिया। अर्जुन क्रमशः किमपुरुष वर्ष के अधिपति द्रुमद, द्रुमपुत्र और हाटक देश के रक्षक गुयुकों को हराकर मानसरोवर तक पहुंच गए। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रमों के दर्शन किए, वहां से हाटक देश के आसपास बचे प्रांतों पर अधिकार कर लिया। अर्जुन उत्तरी हरिवर्षपुर पर जाकर विजय प्राप्त करना चाहते थे, परंतु वहां प्रवेश करते न करते बड़े वीर और विशालकाय द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता से कहा, अवश्य आप असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचना किसी के लिए सुगम नहीं है। आप यहां तक आ गए, बस इसी को आप विजय मान लीजिए। यहां की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से देखी भी नहीं जा सकती है, दिग्विजय की बात तो बहुत दूर रह गई। हम आप लोगों पर प्रसन्न हैं, आपका कोई काम नहीं बिगाड़ेंगे, आपका कोई काम हो तो हमें बता दीजिए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय कर रहा हूं। यदि तुम्हारे इस देश में मनुष्यों का आना जाना निषिद्ध है तो मैं इसमें नहीं घुसूंगा, केवल आप हमें कर दे दीजिए। उन्होंने अर्जुन को कर के रूप में अनेक दिव्य वस्त्र, आभूषण, मृगचर्म आदि दे दिए। फिर अर्जुन आगे चतुर्गिणी सेना लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन वाहन धर्मराज युधिष्ठिर को सौंपकर उनकी आज्ञा से रहने लग गए। जन्मेजय अर्जुन के साथ भीमसेन भी धर्मराज की अनुमति से बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिशा के लिए चल पड़े थे। दशारण देश के राजा सुधर्मा ने बिना किसी शस्त्र के भीमसेन के साथ बाहु युद्ध किया। भीमसेन ने उसे परास्त कर उसकी वीरता से प्रसन्न हो अपना सेनापति बना लिया। अश्वमेध, पुलिंद नगर आदि अधिकांश प्राच्य राज्यों पर अधिकार कर लिया। चेदी देश के राजा शिशुपाल से उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ा। उसने संबंध के कारण धर्मराज के संदेश मात्र से ही कर देना स्वीकार कर लिया। तदनंतर भीमसेन ने कुमार देश के राजा श्रेणीमान को कौशल देश के स्वामी बृहद्बल को और अयोध्यापति धर्मात्मा दीर्घ यज्ञ को अनायास ही वश में कर लिया। उत्तर कौशल, मल्ल देश, हिमालय तटवर्ती जलोद्भव देश के प्रांत अपने अधीन कर लिए। काशीराज, सुबाहु, सुपार्श्व, राजेश्वर, क्रत, मत्स्य और मलद देश के वीरों और वसुभूमि को भी अपने अधिकार में कर लिया। पूर्वोत्तर के देशों में मदधार, सोमधे और वत्स देश को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। भर्ग देश के स्वामी निषादराज और मणिमान पर विजय प्राप्त करके दक्षिण मल्ल और भोगवान पर्वत पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। शर्मक और वर्मक पर विजय प्राप्त करने के बाद मिथिलाधीश को अधीन किया और वहीं से किरात राजाओं को भी अपने वश में कर लिया। सैय, गुय्य, सुय्य, प्रसुम, दंड, दंडधार आदि नरपति अनायासी परास्त हो गए। गिरिव्रत से जरासंध नंदन सहदेव को साथ लेकर मोदाचल के राजा का संहार किया। पौंड्रक वासुदेव और कौशिक नदी के द्वीप में रहने वाला राजा भी पराजित हो गया। बंग देश के राजा समुद्रसेन, चंद्रसेन, करवटाधिपति, ताम्रलिप्त और सभी समुद्र तटवर्ती म्लेच्छ उनके अधीन हो गए। उन सबको संतुष्ट करके सबका धन लेकर भीमसेन अपने बड़े भाई के पास पहुंचे। सहदेव ने भी बड़ी भारी सेना ली, मथुरा, मत्स्य देश आदि देशों को जीतते हुए पटच्चरों को जीता, कुंती भोज पर आक्रमण किया। उसके बाद नर्मदा नदी के तरफ आगे बढ़े, उज्जैन के प्रसिद्ध वीर विंद और अनविंद को हराकर अपने वश में कर लिया। मुंज ग्राम पर अधिकार कर लिया, अर्बुद वातराज पुलिंदों को हराया और सौराष्ट्र देश के स्वामी कौशिकाचार्य आकृति पर विजय प्राप्त करके भोजकट के स्वामी रुक्मी और निषद के भीष्म के पास दूत भेजा। उन लोगों ने श्री कृष्ण के संबंध के कारण बड़े प्रेम से सहदेव की आज्ञा मान ली। वहां से चलकर सूरपारक, तालकाट, दंडक, समुद्र टापुओं को अपने अधीन करते हुए सबको जीतकर सहदेव लंकाधिपति के पास पहुंचे। उस समय लंका पर विभीषण का राज्य था। विभीषण ने बड़ा आदर किया। सहदेव ने इसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा समझी। वहां पर विभीषण की और सहदेव की बड़े प्रेम से बातें हुई। सब कुछ लेकर वहां से वे इंद्रप्रस्थ लौट आए। इधर नकुल पश्चिम दिशा में गए थे। धन धान्य गोधन से परिपूर्ण रोहितक देश में गए। मरुभूमि, शैरीशक और अन्न के भंडार मेहत्थ देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया। दशार्ण, शिबी, त्रिगर्त, अम्बष्ट, मालव, पंचकर्पट, मध्यमक, वाटधान सबको उन्होंने जीत लिया। द्वारिकावासी यदुवंशी और कृष्ण ने बड़े प्रेम से नकुल का शासन स्वीकार किया। इनको जीता थोड़े ही, अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी कर दिया। नकुल के मामा शल्य भी प्रेम से कहा, ओहो नकुल, तुम ये राजसु यज्ञ के लिए आए हो, खूब सा वस्त कर दिया। उन्होंने वहां से लेकर खांडव प्रस्थ लौट आए। नकुल ने कर और उपहार में जो कुछ राशि प्राप्त की वो सब ले जाकर युधिष्ठिर महाराज को सौंप दी। धर्मराज की सत्यनिष्ठा, प्रजा पालन में अनुराग और शत्रु संहार देखकर सारी प्रजा अपने आप धर्म का पालन करने लगी। शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्म पूर्वक शासन करने से समय पर मनचाही वर्षा होने लगी। राष्ट्र सुख समृद्धि से भर गया। राजा के पुण्य प्रभाव से खेती बाड़ी, व्यापार, गोरक्षा बहुत अच्छी होने लगी। प्रजा में परस्पर की धोखेबाजी मिट गई। चोरी और लूट खसोटों का नाम नहीं रहा। राजकर्मचारी झूठ नहीं बोलते थे, धर्मराज के धर्माचरण से अतिवृष्टि अनावृष्टि रोग अग्नि आदि का भय नहीं रहा। लोग उनके पास भेंट देने या प्रिय कार्य करने के लिए आते, युद्ध आदि के लिए कोई नहीं आता था। धर्मानुकूल धन की आमदनी से कोष भरा पूरा और अक्षय रहता था। जब धर्मराज ने देखा कि अब मेरे पास अन्न वस्त्र रत्न आदि के सब भंडार भरे पड़े हैं, तब उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प किया। मित्रों ने उनसे अलग अलग और इकट्ठे होकर भी आग्रह किया कि यही यज्ञ करने का शुभ समय है, जल्दी काम करना चाहिए। जिन दिनों लोगों का आग्रह सीमा पर पहुंच गया था, उन्हीं दिनों में अकस्मात भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर पधार गए। जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण है, वेद स्वरूप है, बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में आने वाले हैं, जड़ चेतनमय जगत में सबसे श्रेष्ठ और विश्व ब्रह्मांड के उद्गम स्थान तथा प्रलय स्थान है। वे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, दैत्यनाशक भक्त वत्सल और आपत्काल में शरण देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्ति युधिष्ठिर पर कृपा करने के लिए असंख्य धन अक्षय रत्न राशि महान सेना लेकर रथ की ध्वनि से दिग्दिगंत को मुखरित करते हुए इंद्रप्रस्थ आ पहुंचे। बहुत उच्च स्तर पर उनका सम्मान किया गया। महाराज युधिष्ठिर अपने भाई पुरोहित धौम्य कृष्ण द्वैपायन व्यास इत्यादियों के साथ में लेकर वे आगे आए और कृष्ण से मिलते हुए बोले कि भैया कृष्ण, ये सारा भूमंडल आपकी कृपा प्रसाद से ही हमें मिला है, सब कुछ आपकी संपत्ति है, ये सब आपके लिए है। मैं चाहता हूं इसके द्वारा विधि पूर्वक हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न हो। आप मुझे अभिलषित राशि यज्ञ के लिए अनुमति दीजिए। गोविंद, अब आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए, आपके यज्ञ से मैं निष्पाप हो जाऊंगा, अथवा मुझे ही यज्ञ दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए, आपकी इच्छा अनुसार सारा कार्य संपन्न होगा। मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के गुणों का वर्णन करते हुए कहा, महाराज आप सम्राट हैं, ये यज्ञ नहीं महायज्ञ है, ये आप ही को करना चाहिए, आप ही इसकी यज्ञ दीक्षा लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, ऋषिकेश आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए, मेरा तो संकल्प सिद्ध हो गया, अब यज्ञ संपन्न होने में कोई संदेह नहीं रहा। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने सहदेव और मंत्रियों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणों एवं पुरोहित धौम्य की आज्ञा अनुसार यज्ञ की सारी सामग्री शीघ्र मंगाई जाए। अभी धर्मराज युधिष्ठिर की बात पूरी नहीं हो पाई कि सहदेव ने नम्रता से कहा, महाराज आपकी आज्ञा से पहले ही हम लोगों ने ये काम इकट्ठा सब काम कर दिया है। उसी समय कृष्ण द्वैपायन तेजस्वी तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मणों को लेकर आए और इस यज्ञ के ब्रह्मा बने और सुसामा सामवेद के उद्गाता बने, ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य अध्वर्यु बने, पैल और धम होता बने। यज्ञ में चार हैं, एक दो तीन चार, तो ब्रह्मा होता अध्वर्यु उद्गाता, ये चार जो ब्राह्मण बैठते हैं वो इनके नाम होते हैं। शास्त्रोक्त विधि से स्वस्ति वाचन के बाद सबने आपस में यज्ञशाला का पूजन किया। शिल्पकारों ने आज्ञानुसार देव मंदिरों के समान बहुत सी सुगंधित भवनों की निर्माण की आज्ञा दी। धर्मराज ने सहदेव को आज्ञा दी कि निमंत्रण देने के लिए दूत भेजो। सहदेव ने दूतों को भेजते समय कह दिया कि देश के समस्त ब्राह्मण और समस्त क्षत्रियों को निमंत्रण दें, आओ, तथा वेश्य और सम्माननीय शूद्रों को भी साथ में लेके आओ। आप केवल निमंत्रण देकर ही मत आ जाना, उनको साथ में लेकर आना। जन्मेजय ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को राजस्व यज्ञ की दीक्षा दी। उन्होंने हजारों ब्राह्मण भाई सगे संबंधी सखा सहचर समागत क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ मूर्तिमान धर्म के समान यज्ञशाला में प्रवेश किया। चारों ओर से शास्त्र पारंगत वेद वेदांत में निपुण झुंड के झुंड ब्राह्मण आने लगे। उनके निवास के लिए हजारों कारीगरों के द्वारा ऐसे ऐसे अलग अलग स्थान बनाए थे जहां अन्न जल वस्त्र आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और सब ऋतुओं के योग्य उनकी सामग्री थी। उन निवास स्थान में ब्राह्मण कथा वार्ता एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्त से करते रहते थे। जब देखो वहां वही कोलाहल हो रहा था, आइए लीजिए, आप दान लीजिए, लीजिए 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 हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म धृतराष्ट्र एवं अन्य सभी हस्तिनापुर वासियों को बुलाने के लिए नकुल को भेजा। उन्होंने वहां जाकर सबको बड़े विनय के साथ प्रणाम किया एवं महाराज युधिष्ठिर का निमंत्रण उनके सामने रखा। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, गांधार देश के राजा सुबल, शकुनी, अचल, वृषक, कर्ण, शल्य, वाहलिक, सोमदत्त, भूरी भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शाल्व, भगदत्त, पर्वतीय प्रदेश के नरपति बृहद्बल, पौंड्रक, वासुदेव, कुंतीभोज, कलिंगाधिपति वंग, आकर्ष, कुंतल, मालाव इत्यादि इत्यादि सिंघल कश्मीर आदि के देश के राजा सब यज्ञ भूमि के अंदर इकट्ठे हो गए। यज्ञ में समागत राजा और राजकुमारों की गणना कोई कर नहीं सकता था। सभी बहुमूल्य भेंट लेकर आए थे। बलराम, अनिरुद्ध, कंक, सारण, गद, प्रद्युम्न, सांब, चारुदेश, उल्मुक आदि समस्त यादव महारथी भी वहां उपस्थित थे। धर्मराज की आज्ञा से सभी समागत राजाओं को सत्कार पूर्वक अलग अलग स्थानों में ठहराया गया। उनके लिए जो स्थान बनाए गए थे उनमें खाने पीने की सारी सामग्री, बावड़ियां, हरे हरे मनोहर बाग बगीचे थे। स्वागत सत्कार के बाद सब लोग अपने अपने निवास स्थानों में ठहर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म और गुरुद्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, आप लोग इस यज्ञ में पधारे हैं, ये आप ही का यज्ञ है, अब आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता कीजिए। इस विशाल धनागार को आप अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य कीजिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो। यज्ञ दीक्षित धर्मराज ने उन लोगों की सम्मति से सबको एक एक कार्य सौंपा। दुशासन को भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में लगाया। अश्वत्थामा को ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा में लगाया और संजय राजाओं के स्वागत सत्कार में लगाए गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने लगे। कृपाचार्य सोने चांदी और रत्नों की देखभाल तथा दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त किए गए। वाल्लिक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घर के स्वामी की तरह स्थित हुए बैठे थे। धर्म के मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधन भेंट में आए हुए पदार्थों को रखने के काम में लगाए गए कि आप लोग जो आए पदार्थ भंडार में रखो, ये दुर्योधन का काम, और खर्च करने के काम में विदुर जी। और भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्राह्मणों के चरण धोने का काम अपने जिम्मे लिया है। इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार ले लिया। जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन करके कृतकृत्य होने वाले सब लोग वहां उपस्थित थे। उनमें से किसी ने भी 1000 सोने की मुद्रा से कम भेंट नहीं दी। सभी चाहते थे कि केवल मेरे ही धन से यज्ञ संपन्न हो जाए। सेना के व्यूह, विचित्र विमानों की पंक्तियां, रत्नों की राशि, लोकपालों के विमान, ब्राह्मणों के स्थान, राजाओं की भीड़, इससे युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ की बड़ी शोभा हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य आज लोकपाल वरुण के समकक्ष था। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पूरी पूरी प्रदक्षिणा देकर यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। जो भी अतिथि आए, अभ्यागत आए, मुंह मांगी वस्तु दी, सबको भोजन कराया, सबके खा लेने पर बहुत सा अन्न बचा रहा। अब उस उत्सव समारोह में जिधर देखो उधर ही हीरे मोतियों की उपहार की धूम मची हुई है। महर्षि एवं मंत्र कुशल ब्राह्मणों ने उत्तम रीति से घी, तिल, शाकल्य आदि की आहुति देकर देवताओं को निहाल कर दिया। दक्षिणा में बहुत सा धन देकर ब्राह्मणों को निहाल कर दिया। कहां क्या कहे, इस यज्ञ से सभी को बड़ी तृप्ति हो रही थी। जन्मेजय यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राजर्षियों के साथ बड़े शोभायमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती थी मानो ताराओं से भरा कोई आकाश हो। उस समय वहां न कोई शूद्र था और न तो दीक्षा विहीन कोई ब्राह्मणी था। राजधर्म की राजलक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देवर्षि नारद बड़े गदगद हो गए। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वो घटना याद आ गई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हो गए हों। अब उन्होंने मनी मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देवर्षि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया। जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोक में आ जाओ, वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण अब यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। महाराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं वे प्रभु यहां विराजमान हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के आराध्य सर्वशक्तिमान अंतर्यामी है। ऐसे भाव रखते हुए नारद जी भगवान को एक टक होकर दर्शन करके ध्यान में डूब गए। नारद जी के आंखों से भक्ति का अश्रुपात होने लगा। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन अब तुम सब समागत राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि वे एक वर्ष में अपने यहां आवे तो विशेष पूजा अर्घ्य करना चाहिए। सभी लोग हमारे यहां बहुत दिनों के बाद आए हैं, तुम सब की पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी तुम पहचान करो कि सब में से सबसे श्रेष्ठ पूजा किसकी हो। धर्मराज ने कहा, पिता मैं इतने में सर्वश्रेष्ठ चुनने का अधिकार आप मुझे क्यों देते हैं, ये तो आप ही के लिए उचित है। आप ही बताओ कि हम लोग किसकी पहले पूजा करें। हमारी दृष्टि में आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज तुम कृष्ण को क्यों भूल रहे हो? यदुवंश शिरोमणि, भगवान कृष्ण से बढ़कर यहां कौन पूजा के पात्र है? तुम देखो कृष्ण का तेज, कृष्ण का बल, कृष्ण का पराक्रम, उनका सौम्य भाव, क्षमाशीलता, उनकी मधुरता, कौन सा ऐसा दिव्य गुण है जो उनके शरीर से टपकता न हो? छोटे छोटे ताराओं में जैसे भुवन भास्कर सूर्य होते हैं, ऐसे ये देदीप्यमान है। जैसे तमसा छन्न स्थान सूर्य के शुभागमन से और वायु ही इन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति से जगमगा उठता है, ऐसे ही आज कृष्ण का ही तो ये सब आनंद है, उन्हीं का ही ये प्रकाश है। भीष्म की आज्ञा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके चरणों में प्रणाम किए और सहदेव को आज्ञा दी। सहदेव ने सर्व पूज्य स्थान पर श्री कृष्ण को विराजमान किया और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनका पूजन किया, उनका चरण धोया और सब जगह आनंद मनाया जाने लगा। बेशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय सावधानी से सुनना, ये सब देखकर चेदिरा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर चिढ़ गया। उसने भरी सभा में पितामह भीष्म और धर्मराज को धिक्कारते हुए कृष्ण को फटकारना शुरू किया। उसने कहा, बड़े बड़े महात्माओं और राजर्षियों के उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र कृष्ण कभी नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों ने कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। ए पांडवों, तुम अभी बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म का भी ज्ञान नहीं है। पितामह भीष्म सठिया गए हैं, इनकी दृष्टि दीर्घ दृष्टि नहीं रही। भीष्म, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होना ही पड़ता है। कृष्ण राजा नहीं है, फिर यह राजाओं में सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? ये आयु में बूढ़ा भी नहीं है, इसकी आयु तो बहुत छोटी है और इसके पिता वसुदेव अभी जीवित है। वसुदेव के रहते ये श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? यदि इसे अपना सच्चा हितेशी और अनुकूल समझकर तुम लोगों ने इसकी पूजा की हो तो क्या ये आपके लिए द्रुपद से बढ़कर है? यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो तो क्या यह द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसकी पूजा उचित है? ऋत्विक की दृष्टि से भी सबसे पहले विद्या वयोवृद्ध भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की पूजा होनी चाहिए थी। युधिष्ठिर, इच्छा मृत्यु पुरश्रेष्ठ पितामह भीष्म के रहते तुमने कृष्ण का पूजन क्यों किया? तुम्हें इस बात का उत्तर देना पड़ेगा। शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वत्थामा के सामने कृष्ण की पूजा का क्या अर्थ है? पांडवों, राजाधिराज दुर्योधन, भरत वंश के आचार्य महात्मा कृपाचार्य, किम पुरुषों के आचार्य द्रुम और पांडु के समान सम्मानीय सर्वगुण संपन्न भीष्मक को छोड़कर उनकी उपस्थिति में तुमने कृष्ण की क्या समझकर अग्र पूजा की है? यह कृष्ण न ऋत्विज है, न राजा है, न आचार्य है, फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की है? यदि तुम्हें कृष्ण की अग्र पूजा करनी थी तो इन राजाओं को और हमको यहां क्यों बुलाया गया? क्यों हमको यहां अपमानित किया गया? हम लोग भय लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं दे रहे थे। हम तो ये समझते थे कि ये सीधा साधा धर्मात्मा युधिष्ठिर बिचारा कोई यज्ञ कर रहा है, हमको भी अच्छे काम में सहयोग दिया जाना चाहिए। ये सम्राट होता है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी सद्भावना लेकर हम यहां आए थे। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हमारा तिरस्कार करते हो। तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात हो गए, कोई धर्म का काम किया नहीं, इसलिए तुम आज धर्मच्युत हो भी अकस्मात हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा, अरे कृष्ण तुम ये सब देख रहे हो? मैं मानता हूं कि पांडव बिचारे डरपोक और तपस्वी हैं, उन्होंने यदि ठीक ठाक नहीं भी समझा है तो तुम्हें तो कम से कम जानना चाहिए था कि क्या तुम इस पूजा के अधिकारी हो। जो अधिकारी होता है वो कभी कहता है कि मैं अधिकारी हूं? यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी हो तो तुम्हें ये पूजा विनम्रता के कारण से अस्वीकार कर देनी चाहिए थी, क्यों तुमने स्वीकार किया? जैसे कुत्ता लुक छिपकर जरा सा भी घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, वैसे तुम ये अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने को बड़ा मान रहे हो। हाय हाय, ऐसी तुम्हारी बुद्धि। तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता है, क्या हो गया? ये पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसक का विवाह करना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीन को राजाओं में बैठा देना, जिस प्रकार अपमान होता है, ऐसे ही एक अयोग्य तुम्हारी पूजा करके भी पूजा का अपमान हुआ है। हमने आज युधिष्ठिर को भी पहचान लिया, भीष्म को भी पहचान लिया, और तुमको तो पहले से ही पहचानते थे, आज हमने तुमको और पहचान लिया कि तुम कितने घटिया दर्जे के आदमी हो। तुम सब एक से एक बढ़कर हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने तत्क्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा, हे शिशुपाल, आपका ये कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी होता है। तुम इसी जबान से किसी का सम्मान भी कर सकते हो, मीठा भी तो बोल सकते हो, क्या कड़वा बोलना जरूरी है? क्या ये तुम नहीं समझते कि हमारे पितामह भीष्म धर्म के रहस्य को नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। आप व्यर्थ में ये वाणी का दोष क्यों ले रहे हो? क्यों उनका तिरस्कार कर रहे हो? देखिए, यहां वयोवृद्ध बहुत से राजा उपस्थित हैं, किसी को भी कृष्ण की पूजा बुरी नहीं लग रही, फिर आपको इसमें क्या बुरा लग रहा है? हे चेदी नरेश, पितामह भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्वज्ञान आपको थोड़ा ही है। युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने संबोधित करते हुए कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में से सबसे श्रेष्ठ है। जो इनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता है उसके सामने अनुनय विनय करना अधर्म है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है वह उससे श्रेष्ठ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय प्राप्त नहीं की है? एक का भी नाम बताओ। ये केवल हमारे ही पूज्यों ऐसी बात नहीं, सारे जगत के पूजनीय हैं। इन्होंने सब पर विजय प्राप्त की है। इतना ही नहीं, संपूर्ण जगत सर्वात्मना इन्हीं के आधार पर स्थित है। मैं मानता हूं कि यहां बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं, फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं। पूजा कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है, उनके मुंह से मैंने कृष्ण के कितने कितने दिव्य गुणों को सुना है, और मैं भी एकांत में बैठा हुआ इनके गुणों के अंदर डूब जाता हूं, और उनके गुणों में डूबने से मुझे महान आनंद की प्राप्ति होती है। मैं तो यहां कृष्ण की पूजा का वर्णन मेरे अनुभव से कर रहा हूं, सुनी सुनाई बात पर नहीं कर रहा हूं। इन्होंने आज तक अपने जन्म से लेकर अब तक कितने कर्म किए हैं ये मैंने श्रेष्ठ पुरुषों के मुख से सुना है। शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश या संबंध के कारण या उपकारी होने के कारण से कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने का कारण यह है कि भगवान कृष्ण के द्वारा सारे प्राणियों को सुख आनंद और तृप्ति मिला करती है। यहां जितने लोग हैं उन सब की बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ली है। यश, शूरवीरता, विजय में कोई भी कृष्ण के समान नहीं है। ज्ञान और बल में कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। दान, कौशल, शस्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, विनय, लक्ष्मी, बुद्धि, धैर्य, संतोष आदि सभी गुणों में श्री कृष्ण नित्य निरंतर निवास करते हैं। परम ज्ञानी श्री कृष्ण हमारे आचार्य, पिता और गुरु हैं। हम सब लोगों को इसमें हार्दिक सहयोग देना चाहिए। हमारे ऋत्विक, गुरु, विवाही है, स्नातक, राजा, प्रिय मित्र सब कुछ है, वो कृष्ण ही है। हमारे लिए कृष्ण से अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। उनकी क्रीड़ा ही तो सारी जगत है, उनकी अव्यक्त प्रकृति ये व्यक्त हुई हुई है। शिशुपाल, आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशाएं ये सब उन्हीं की शक्ति से संचालित हो रही है। नदियां, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, ज्योतिष चक्र में सूर्य जिस प्रकार से श्रेष्ठ है, ऐसे संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। शिशुपाल, तू तो काल का एक अबोध बालक है, इस बात का तुझे ज्ञान नहीं है कि कृष्ण के अंदर क्या चीज उपस्थित, क्या क्या चीज है। सच्ची जिज्ञासा होती तो आज तुम भरे सभा में ऐसे वचन नहीं बोलते। एकमात्र शिशुपाल इस पूजा को बुरा समझता है, वह समझा करे, वो जाने उसका काम। युधिष्ठिर, अपने काम में कोई दोष नहीं है, करो पूजा। भीष्म पितामह इतना कहकर चुप हो गए। अब माद्री नंदन सहदेव ने कहा, हे सभासदो, पितामह भीष्म की आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। भगवान श्री कृष्ण पराक्रमी है, मैंने इनकी पूजा की है, जिन्हें ये बात सहन नहीं हो रही है मैं उनके सिर पर लात मारता हूं। मेरे इतना कहने के बाद जिसको विरोध करना हो वो बोले, मैं उसका वध करूंगा। है कोई माई काला खड़ा हो बोले? सभी बुद्धिमान आचार्य, पिता, गुरु इनको मानते हैं तो फिर इनको तिरस्कार करने का दुस्साहस कौन कर रहा है? ऐसा कहकर सहदेव ने इस प्रकार कहकर जोर से लात पटकी, परंतु उन मानी और बलवान राजाओं में से किसी की जीभ तक नहीं हिली और आकाश से सहदेव के सिर के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक आवाज आने लगी, साधु 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 साधु। नारद जी वहां बैठे हुए थे, नारद जी गदगद हो गए और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। खड़े होकर सबके सामने कहने लगे, जो लोग भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते उन्हें जिंदा रहने पर भी मुर्दा ही समझना चाहिए, उनके साथ तो कभी बात भी नहीं करनी चाहिए और ऐसों के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। इसके अनंतर सहदेव ने ब्राह्मण और क्षत्रियों की यथोचित पूजा की। इस प्रकार पूजा का काम पूरा हो गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शिशुपाल भरी सभा में इतनी बात सुनते पर भी आग बबूला था, उसकी आंखें खून से उगल रही थी। उसने राजाओं को पुकार कर कहा, मैं सेनापति बनकर खड़ा हूं, आप लोग किस अधेड़ बुन में पड़े हैं, आइए हम लोग डटकर यादवों और पांडवों को सम्मिलित करके सेना से भिड़ जाएं। इस प्रकार शिशुपाल यज्ञ में विघ्न डालने के लिए राजाओं को उत्साहित करने की सलाह देने लगा। कुछ लोग क्रोध से तिलमिला रहे थे, चेहरे पर शिकन पड़ गई, वे यही सोच रहे थे कि कृष्ण की पूजा भी ना हो और युधिष्ठिर का यज्ञांत अभिषेक भी ना हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत से लोग क्षुब्ध सागर के भांति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तब उन्होंने पितामह भीष्म के पास जाकर कहा, पितामह अब मुझे क्या करना चाहिए? आप यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति और प्रजा के हित का कोई उपाय बताइए। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, क्या कभी कुत्ता सिंह को मार सकता है? मैंने पहले ही तुम्हारे कर्तव्य का निश्चय करके सब बात बता दी। जैसे सिंह के सो जाने पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चुप रहने से ही ये चिल्ला चिल्ला रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूर्ख शिशुपाल अनजान में इन राजाओं को यमपुरी भेजना चाहता है। निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का तेज भी खींच लेना चाहते हैं। वे जिसको खींच लेना चाहते हैं उसकी पहले ऐसी ही बुद्धि हो जाया करती है। ये सारे जगत के मूल कारण और प्रलय स्थान है। युधिष्ठिर कोई चिंता मत करो। भीष्म पितामह की यह बात शिशुपाल ने कान लगा करके ध्यान से सुनी कि बुड्ढा क्या बोलता है। उसने भीष्म को डांटते हुए, भीष्म तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती? अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित करते हो? मूर्ख और घमंडी कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारे जीभ के सौ सौ टुकड़े नहीं हो जाते? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करता है उसी ग्वालियों की तुम ज्ञानी होकर क्यों प्रशंसा करते हो? यदि इसने बचपन में किसी पक्षी बकासुर को, घोड़े केसी को अथवा बैल वृषभासुर को मार डाला तो कौन सी बड़ी बात है? वे कोई युद्ध के उस्ताद नहीं थे। यदि उसने चेतनाहीन छकड़े को पैर मारकर उलट दिया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या चमत्कार हो गया? यदि उसने गोवर्धन पर्वत को सात दिन तक उठा लिया तो कौन सी अलौकिक घटना घट गई? अरे ये तो दीमकों की बम्बी मात्र है। अवश्य ये सुनकर हमें आश्चर्य हुआ कि पेटू कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर बहुत सा अन्न खा लिया। जिस महाबली कंस का नमक खाकर ये पला था उसी को ही इसने मार डाला। है ना कृतज्ञता की हद? हे धर्म ज्ञानी जी भीष्म जी, धर्म के अनुसार स्त्री गौ ब्राह्मण और जिसका अन्न खाया जाए, जिसके आश्रय में रहा जाए, उसे नहीं मारना चाहिए। जिसने जन्मते ही स्त्री को मार डाला, पूतना को, उसे ही तुम जगतपति कहते हो? वाह वाह, बड़ी आपकी बुद्धि की बलिहारी है। अजी तुम्हारे कहने से ही कृष्ण भी अपने को वैसे ही मानने लग गया। क्या समय आया है हे धर्मध्वजी भीष्म जी, तुमने अपने स्वभाव की नीचता के कारण पांडवों को ऐसा बना दिया। तुमने धर्म की आड़ में जो जो दुष्कर्म किए वे क्या कभी किसी ज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं? काशी नरेश की कन्या अंबा साल्व को अपना पति बनाना चाहती थी, किंतु तुम उसे बलपूर्वक हर लाए, ये धर्म है? और फिर कहते हो हमारा ब्रह्मचर्य अखंड रहेगा। तुमने नपुंसकता और मूर्खता के कारण से हट पकड़ा है। अब तक तुमने कौन सी उन्नति संपादन की है? हां धर्म की बातें तो बढ़कर बढ़कर अवश्य करते हो। सभी लोग जरासंध का आदर करते थे, उन्होंने कृष्ण को दास समझकर उसका वध नहीं किया। उनकी हत्या करने में इस कृष्ण ने भीमसेन और अर्जुन को साथ मिलकर जो करतूत की वो कोई नहीं जानता क्या? सब लोग जानते हैं। क्यों ब्राह्मण बनकर के गया? आश्चर्य तो यह है कि तुम्हारी बातों में आकर पांडव भी कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। क्यों न हो, तुम्हारे जैसे नपुंसक पुरुषार्थहीन और बूढ़े जब सम्मति देने वाले हो तब ऐसे ही तो लोग होते हैं। शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर भीमसेन वहां हाथ मलने लगे, गदा उठाई, अपने ओर आसन से खड़े हो गए और भीमसेन ने कहा, शिशुपाल चुप रहो, बहुत हो गया। सबने देखा अरे भीमसेन प्रलय काल की अग्नि के समान दांत पीस रहे हैं। वे अपनी गदा लेकर शिशुपाल के ऊपर टूट पड़ना चाहते थे। भीष्म ने बीच में आकर कहा, भीमसेन चुप। कृष्ण की चुप्पी को देखकर तुम चुप नहीं रहना चाहते? इसको यदि मारने का काम होता, कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, चुप पर चुप हो जाओ। भीमसेन किसी प्रकार से उनके हाथ छुड़ाकर आगे जाने लगे। भीष्म पितामह फिर आगे आ गए, नहीं भीमसेन मेरी आज्ञा है, चुप रहो। शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ, डटा रहा, कहा भीष्म छोड़ दो इसे, अभी अभी हम देख लेंगे भीमसेन में कितना बल है। ये जरासंध को मारकर अपने को जाने क्या समझने लग गया। पितामह ने शिशुपाल की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत लगा करके भीमसेन को पीछे की ओर धकेल दिया। भीमसेन ने कहा, पितामह आप मुझे इसे मारने से क्यों रोक रहे हैं? भीष्म पितामह ने कहा कि आओ भीम, मैं तुम्हें शिशुपाल के विषय में कुछ नई कथा सुनाना चाहता हूं, आओ शांत हो जाओ। इस प्रकार भीम को रोक दिया गया और अब वे क्या कथा होगी वो आगे के प्रसंग में बताई जाएगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।